हम लोग छह ढाल की तीसरी ढाल पर डिस्कशन कर रहे हैं और इस पर आश्रव तत्व की चर्चा चल रही है। अभी तक की बात में ये आया है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच चीजें हैं जो आश्रव के कारण है, जिनके कारण कर्मों का आना होता है। सबसे पहला जो कारण होता है कर्म को अट्रैक्ट करने का, वो योग होता है। योग के कारण आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है और आत्मा के प्रदेशों के कंपन से कर आत्मा में वो एक शक्ति, योग शक्ति जिसको बोलते हैं, जिससे कर्मों का आकर्षण होता है, कर्म आते हैं। और यदि फिर वहां पर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये वाली चीजें मिल जाएं, तो वहां पर कर्म आकर रुक जाते हैं और वो आश्रव ईर्ष्यापथ आश्रव ना होके सांप्रदायिक आश्रव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस में तो किसी को कोई डाउट नहीं था?
नहीं,
हाँ। इसमें आचार्य गुणभद्र है, उन्होंने एक आत्मानुशासन करके ग्रंथ लिखा है। उस आत्मानुशासन ग्रंथ में उन्होंने इनके पूरे सीक्वेंस को बहुत ही, मतलब ये पूरा सीक्वेंस है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है, इस सीक्वेंस को आप उल्टा कर दीजिए, योग, कषाय, प्रमाद, अविरति और मिथ्यात्व। ठीक है, हम यदि इसको उल्टा कर देते हैं तो ये उत्तरोत्तर कम कम कम, मतलब इसमें डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि अकेली आपके पास योग है तो आपके पास कर्म आ रहे हैं, लेकिन देयर इज नो हार्म। ठीक है, हेलो।
अकेला योग है तो देयर इज नो हार्म,
अकेला योग है तो योग है और प्रमाद है, योग है और कषाय है, कषाय है साथ में योग है, तो भी बंद इज मिनिमम। जैसे कि दसवें गुण स्थान में कषाय है और योग भी है, करेक्ट। दसवें के अंत तक कषाय रहेगी, ग्यारहवें बारहवें में भी इतना दशा आएगी। तो अकेली योग है और कषाय है तो भी बहुत कम बंद है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो शायद अबुद्धि पूर्वक की कषाय है। तब आप शुद्धोपयोग में है और आपको नहीं पता कि कषाय क्या हो रही है, करेक्ट। जैसे कि नौवे दसवें गुण स्थान में, वेद नौवे में, लोभ दसवें में, तो कुछ पता नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो शुद्ध उपयोग में मुनिराजलीन है।
बराबर।
आपके पास योग है, कषाय है और साथ में प्रमाद है। ये प्रमाद क्या होता है? एक तो होता है हमारी दशा में तो हम किसको आलस्य बोलते हैं, वो आलस्य नहीं है, वो अविरति है। प्रमाद हमको नहीं होता, प्रमाद हम लोग को जो होता है वो अविरति है। हमने कुछ व्रत लिया हो फिर हम उसमें आलस कर सकते हैं, राइट। हमने व्रत ही नहीं लिया तो जो प्रमत्त दशा होती है छठवें गुण स्थान में, लिए हुए व्रतों में जो प्रमाद होता है। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? प्रमाद यानी कि ये नहीं जो हम जिसको आलस बोलते हैं वो नहीं, प्रमाद यानी कि जो आपने विरति ली है, व्रत लिए हैं, उन लिए हुए व्रतों में हमको
सावधानी नहीं रहती है,
असावधानी रहती है, वो प्रमाद होता है। तो सिक्वेंसिंग क्या है, यदि आपके पास सबसे पहले योग है कि नहीं, योग है तो कर्म आएंगे, योग के साथ कषाय है, कर्म रुकेंगे भी लेकिन कम रुकेंगे, कषाय के साथ प्रमाद है तो थोड़े ज्यादा रुकेंगे, तो छठवें गुण स्थान में थोड़ा ज्यादा बंद होगा, प्रमत्त दशा है वहां पर, राइट।
तो अब योग है, अनुभव जी अतिचार बोल सकते हैं इसमें,
हाँ, प्रमाद, अतिचार, अतिचार बराबर, अतिचार आएंगे इसमें, जितनी भी अतिचार नहीं भी आए, मतलब प्रमत्त दशा में साथ में बाहर आ रहे हैं, उपयोग से बाहर आ रहे हैं, तो कषाय से अधिक ऊपर जाके भी प्रमत्त दशा तो है ही ना, प्रमत्त दशा है नहीं वहां पर, करेक्ट। आत्मा में सावधानी की दशा, आत्मा के बाहर तो हर जगह सावधानी है, अब वो वाली बात अलग है कि 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है और 28 मूल गुणों में अतिचार लग रहे हैं, तो वो दो अलग अलग है। तो अतिचार लग जाते तो वेरी अपेरेंट प्रमत्त दशा हो गई वो, तो कि प्रमाद हो ही गया। और जब 28 मूल गुणों का अच्छा शुद्ध पालन हो रहा है तब भी शुद्धोपयोग की अपेक्षा तो आप आत्मा में सावधान नहीं हो, आप बाहर हो। भले आप कितनी सावधानी से अपने समितियों का पालन कर रहे हैं, गुप्तियों का पालन कर रहे हैं, तो ये उत्तर बता रहे हैं कि यदि आप अकेली कषाय वाले थे लेकिन साथ में शुद्धोपयोग था तो कोई बात नहीं थी, बंद तो जारी था, बंद तो हो रहा था क्योंकि कषाय थी, भले वो बुद्धिपूर्वक आप नहीं कर रहे थे। अब जब आप कषाय कर रहे हो और वो बुद्धिपूर्वक भी होने लगी है, वहां पर प्रमत्त दशा आ गई है, राइट? आप यदि शुद्धोपयोग के बाहर हो वो प्रमत्त दशा ही है, वहां प्रमाद है ही। हम वो उसकी अपेक्षा उनको अप्रमत्त, उनको अतिचार अनाचार के लगाते हैं कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है वो वाली प्रतिज्ञा का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, 28 मूल गुणों में कुछ खंडन तो नहीं आ रहा है, वो अखंडित पालन चल रहा कि नहीं चल रहा। उसके कारण हम देखते हैं कि उन्होंने अतिचार लगा है कि उनके अनाचार लगा है कि क्या लगा है, उसको हम प्रमाद कह देते हैं। बट सात्विक की अपेक्षा तो छठवा प्रमत्त ही है ना, सातवा अप्रमत्त है, तो छठवा प्रमत्त दशा है, मतलब स्वरूप के बाहर की दशा है। तो छठवे से सातवे से ज्यादा बंध छठवे में होता है, राइट? वो अपेरेंट है, आप आत्मा के बाहर है तो डबल बंद हो रहा है। एक तो आपको अबुद्धि पूर्वक कषायों का जो चल रहा है वो तो चल ही रही है, अब आप साथ में ऑलरेडी चलती कषायों में और इंड्यूस कर रहे हो आप अपनी बुद्धि पूर्वक कषायों को, करेक्ट?
अनुभव जी, क्लियर करना चाहती हूं मैं अपनी, मेरी समझ में, कि अगर प्रमाद हम अतिचार वगैरह लेंगे तो वो ज्यादा पंचम गुण स्थान वर्ती के उसके के उसमें प्रमाद वो लेंगे, और शुद्ध उपयोग की अपेक्षा से वो प्रमाद वो जो मुनिराज है उनों के हिसाब से लेंगे कि
दोनों में। देखिए दो चीजें हैं, एक तो आपने व्रत जो लिया है उस व्रत में आप आलस कर गए, मतलब वो व्रत में थोड़ा थोड़ा चूक हो गई, वो वाला प्रमाद हो गया। जो आपने व्रत लिया है, जैसे आपने अनुव्रत लिया है तो अनुव्रत के पालन में कुछ कुछ हो गया, जो सीमा में किए गए दोष हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही बहुत बड़ा क्राइम हो गए हैं तो वो अनाचार की श्रेणी में जाके वो व्रत ही खंडन हो गया वहां पर। तो आप वहां पर जो व्रत लिया है उसमें दोष लगाया, वो प्रमत्त दशा, वो प्रमाद की दशा, वो आपने प्रमाद किया, वो कारण है बंध का। और दूसरा सबसे बड़ा प्रमाद ये कि आप स्वरूप में सावधान हो ही नहीं ना, तो जब भी आप शुद्धोपयोग में नहीं हो तब तक तो प्रमाद चल ही रहा है स्वरूप के प्रति,
बराबर।
तो शुद्धोपयोग से बाहर हमेशा बंध ज्यादा ही होगा, क्योंकि जब शुद्धोपयोग में आप हो तब भी कषाय हैं, आप वितरागी नहीं हुए तो तब तो बंध चल रहा है, बट हम यहाँ बंध के कारण पढ़ रहे हैं। तो बंध के कारण में जो तीसरा जो इसको और इंटेंस बना देता है बंध को, उसको और एक्सेलरेट करता है, वो शुद्ध उपयोग में नहीं रहना, जो छठवे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के, सातवे गुणस्थानवर्ती मुनिराज की अपेक्षा, तो उनके भी प्रमत्त दशा इसलिए नाम दिया जाता है उसको। स्वरूप के बाहर है तो उनके विशेष बंध है ही, करेक्ट? तो सामान्यतः कहेंगे तो हाँ, जो आप कह रहे हैं अतिचार है, जो व्रत ली हुई प्रतिज्ञा में जो दोष लग रहा है वो प्रमाद है, लेकिन जब हम योग और कषाय की अपेक्षा देखते हैं तो नया वाला प्रमाद से क्या इंड्यूस हुआ, और ये हुआ कि जब योग और कषाय अकेले थे तब तो आपके पास इतना बंद नहीं था, क्योंकि आपके पास आपका उपयोग वहां पर नहीं लगा था, आपने उपयोग को भी भ्रमित कर दिया, तो वो आलस में आ गया, प्रमाद में आ गया और विशेष बंद होने लगा, करेक्ट? ठीक है, हाँ। आगे इसके बाद चलिए, अब आपके पास कषाय योग भी है, कषाय भी है, और प्रमाद तो बात छोड़िए, हमने प्रमाद कर सके, हमने ऐसे व्रत ही नहीं लिया, हमारे पास अविरति है। तो अब अविरति को, जैसे कि चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, उसको पांचवे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बहुत बंद है, क्योंकि इसके अनुव्रत नहीं है, इसके सिर्फ इतना है कि इसका अन्याय नीति अभक्ष का त्याग है, बाकी इसके कोई व्रत वगैरह नहीं है। आप बोलोगे अभी वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, तो वो युद्ध करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अन्याय अनीति अभक्ष का उल्लंघन करके तैयार नहीं है, उसको अन्याय के लिए युद्ध करना पसंद नहीं है, लेकिन यदि नीति न्याय उसकी कषाय की भूमिका में चलता हो तो भरत चक्रवर्ती थोड़ा अपने चक्रवर्तित्व के मान के लिए अपने भाई से लड़ेंगे तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगे। और बाहुबली भी अपने स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने बड़े भाई पर युद्ध करने को तैयार हो जाएंगे, तो उनके भी सम्यक्त्व प्रश्न चिन्ह नहीं हुआ है। लेकिन ये उनकी अविरति है तो उनका बंध विशेष उनको निरंतर लग रहा है। जब वे युद्ध नहीं कर रहे हैं तब भी उनकी युद्ध का त्याग नहीं है ना। हम जैसे कि अभी बहुत सारे पाप नहीं करते हैं, लेकिन हमारे उन पापों के त्याग की प्रतिज्ञा नहीं है, करेक्ट? जैसे अभी आप लोग अपने घर में आप ट्रेवल नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके ट्रेवल नहीं करने की प्रतिज्ञा नहीं है। तो अभी कोई बोलेगा चलो चलते हैं तो आप आगे चल दोगे उसके साथ। तो तत्संबंधी हिंसा तो आपके अभी भी वहां पर भली प्रवृत्ति में नहीं आ रही है, लेकिन उसकी तैयारी तो हमारी पूरी है। तो अविरति हम विरक्त, अभी हमने उसमें उसके तत्संबंधी कोई नियम कोई व्रत नहीं लिए है। तो ये अविरति हुआ, अविरति संबंधी आश्रम, ठीक है। तो ये प्रमाद से बड़ा हो जाएगा, मतलब आप व्रत लेके प्रमाद करते हो तो अल्प आश्रम है।
मुझे वो एकदम बेस्ता नहीं है वो, उसका लॉजिक के अगर व्रत लिए है या व्रत नहीं लिए है, तो व्रत नहीं लिए है तो वो जितने सपोजिंग के ये क्षेत्र के घर के बाहर मैं नहीं निकलूंगी, मैंने अगर व्रत नहीं लिया तो भी मैं घर में बैठी हूँ तो मुझे ज्यादा बंद हो रहा है, और अगर मैंने व्रत लिया मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो मुझे कम बंद होएगा। वो मुझे एकदम वो न्याय लॉजिक से एकदम नहीं बैठता है। तो
अरे इसमें यही रहता है कि देखिए, एक आपने भावनात्मक दृढ़ कर रखा है कि आप रात में नहीं खाते,
बराबर
आप नहीं खाते, ठीक है। और एक आपने दे रखा है कि भैया ठीक है, हमारे यहाँ इतना लंबा दिन होता है, मैं रात में खाने का मौका ही नहीं मिलता, राइट? देयर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो जब आपको पता है कि आप रात में नहीं खाते, दैट इज नॉट सिचुएशनल, दैट इज इंटेंशनल, आप नहीं खाते बिकॉज यू नो कि हिंसा बहुत होती है, तो आप उस हिंसा के प्रति साइकोलॉजिकली मेंटली इमोशनली आप अंदर से चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर दया है, इसलिए यू आर डूइंग इट, नॉट बिकॉज कि आपके यहाँ दिन ही 18 घंटे का होता है तो आपको रात में खाने का मौका जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आप सोते हो तब 6 घंटे में रात ही निकल जाती है तो आप कभी खा ही नहीं पाते हो। तो आप रिमूव कर दो एवरीथिंग को, आप जस्ट उनके परिणामों के ब्लूप्रिंट को देखो। तो जिसको घर ही ऐसा मिला है, जिसको जगह ही ऐसी मिली कि वहाँ जीव उत्पन्न नहीं होते, वहां पर भोजन में कुछ उल्टा सीधा आता ही नहीं है, तो बिना विचार के शुद्ध भोजन भी कर रहा है, बट उसके परिणामों में वो करुणा का दया का दरोपण हुआ ही नहीं है। हम परिणामों से बंद बोलते हैं, राइट? तो आप नियम ले रहे हो, मतलब परिणामों के ब्लूप्रिंट में वो एक विशेष विशुद्धि हुई है। इसका ये मतलब नहीं कि वो अंदर बैठे हैं, दोनों अंदर बैठे हैं तो बॉडी तो उनकी सेम है, बट अविरति और वृत्ति वाली की परिणति में विशुद्धि में अंतर तो होगा ना, क्योंकि उसके अंदर ऐसा विवेक जागृत हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप व्रत लो। व्रत यानी कि आपने विचार किया है कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, वो विचार पूर्वक हुई बात है। तो इन सबका लेना देना परिणामों से है और किसी चीज से नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे जब भरत चक्रवर्ती लड़ रहे हैं बाहुबली से, तो बाकी के सैनिक कोई नहीं लड़ रहे हैं, कोई भी नहीं लड़ रहा है वहां पर बाकी के सैनिक, क्योंकि इन लोगों ने निर्णय कर लिया है कि भैया ये दोनों तो चरम शरीरी है, इन दोनों के युद्ध में हम लोग लड़ेंगे तो ये लोग तो मरेंगे नहीं और हम लोग मरेंगे, करेक्ट? तो सबने डिसाइड किया, मंत्रियों ने, चतुर मंत्रियों ने, कि नहीं भैया आप दोनों लड़के डिसाइड कर लो, जो जीत गया 3 युद्ध कर लो, जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध, जो जीत गया। नाउ यू सी भरत और बाहुबली लड़ रहे हैं और बाकी की सेना नहीं लड़ रही, लेकिन भरत और बाहुबली को लड़ते हुए कम बंध है और बाकी की सेना को ना लड़ते हुए ज्यादा बंध है। दोनों अविरति है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप है ये लोग सम्यक है और बाकी के मिथ्यात्व है, तो अवनीति मिथ्यात्व के साथ होती है तो और भयंकर काम हो जाता है। राइट, ये एक से एक लेवल है सिक्वेंसिंग। ये जो पंडित दौलत राम जी ने यहाँ लिखा है ना, ये एक्चुअली आत्मानुशासन की गाथा है। मिथ्या अविरति अरुप्रमाद, मिथ्या अविरति अरुप कषाय प्रमाद सहित उपयोग, कषाय सहित उपयोग, ये वाली जितनी भी सिक्वेंसिंग की गई है ये एक्चुअली गुणभद्राचार्य ने प्रॉपर सिक्वेंस करके इसकी गाथा लिखी है। तो जस्ट द सिचुएशन है, इसके अविरति दोनों है, फिर भी जब अविरति में मिथ्यात्व के होने से और नहीं होने से इतना फर्क पड़ जाता है तो फिर अविरति और प्रमाद के बीच तो फिर बहुत अंतर है। हेलो, ठीक है, ठीक है। तो ये पांच बंद के द्वार हो गए, सबसे पहले मिथ्यात्व, अविरति,
प्रमाद,
कषाय प्रमाद योग। आई थिंक मैंने पहले प्रमाद को बोला है, कषाय को बोला जो आपको सिक्वेंसिंग बताई थी। आई थिंक आई फर्स्ट यूज्ड प्रमाद, राइट?
दो चीजें हो जाएंगी इसमें। आपने योग और कषाय पे ले लिए थे और फिर प्रमाद लिया।
हाँ, तो वो सिक्वेंसिंग आई थिंक मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। योग है, योग के साथ जब आप
तो हम जैसे बोलते हैं तो हम वैसे ये ऑर्डर ही बोलते हैं, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग।
अच्छा, फिर ठीक है।
यूजुअली मैं तो वैसे याद, ये ऑर्डर ही मेरा याद करने का था और आपने बोला, आपने रिवर्स लिया मगर लिखा मैंने रिवर्स में।
ये मतलब इनका सीक्वेंस है, आश्रम के सीक्वेंस है। पंडित दौलत राम जी ने हाईएस्ट से लोएस्ट पर ले गए हैं, वहाँ मूल गाथा में लोएस्ट योग से उठा के मिथ्यात्व तक ले गए, फिर वहाँ पर बोला है पंडित ओटोमल जी की टीका है उसमें, ये बोला है कि बताओ मतलब मिथ्यात्व वाले को तो क्या रहना चाहिए, उसका मतलब जीवन का बचा ही क्या, हम कितना दो चार व्रत भी ले लेंगे, हमने बहुत सारे व्रत ले लिए, हमने बहुत सारे रात्रि में भोजन नहीं करते, रोज स्वाध्याय भी करते हैं और मिथ्यात्व को नहीं घसाया तो क्या काम का है, क्योंकि अविरति से बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है, हमें व्रत का तो ख्याल है और मिथ्यात्व को हटाने का ख्याल नहीं है। तो गुरुदेव श्री यही बोलते थे, दया दान व्रत भक्ति के परिणाम, ये सारे शुभ परिणाम ये सब क्या काम आएंगे जब बीच में मिथ्यात्व है, तो सम्यक्त्व के बिना ये सब एक के बिना सब शून्य 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 हो जाएंगे, क्योंकि बंध में कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है। राइट, किसी को कोई क्वेश्चन?
नहीं, बराबर है। किसी के फोन में से ना थोड़ा एको आता था, तो अगर आप लोग नहीं बोलते हैं कोई तो अपना म्यूट करते हैं ना, पता नहीं लास्ट कौन ज्वाइन हुआ था उन लोग के फोन से वो एको आती थी।
ठीक है, तो मिथ्यात्व इज उल्टी मान्यता, हमारा विपरीत श्रद्धान होता है। इसमें भी फिर हम और बाइफरकेशन कर सकते हैं, ग्रहित और अग्रहित। तो ग्रहित में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बंध है, अग्रहित में उससे कंपैरेटिवली कम है, बट दोनों मिथ्यात्व में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आज अग्रहित है वो नहीं संभला तो कल को वो ग्रहित बन जाएगा, तो उसमें कोई बात ऐसी विशेष है नहीं। तो मिथ्यात्व यदि चला गया है तो फिर हमको मूल बंध का कारण बचता है अविरति। अविरति मतलब हमें व्रत नहीं लिए, हमने हम चौथे गुण स्थान में खुश हो गए, हम पांचवे में देश व्रत या छठवें सातवें महाव्रत नहीं लिए हैं, तो हमारे बंध विशेष है। फिर हमने व्रतों को भी टैकल कर लिया, हमने अविरति का भी त्याग कर दिया, तो उस संबंधी बंध खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रमाद जो चल रहा है वो वाला बंध तो चलेगा। और अब प्रमाद भी चला गया, हम शुद्धोपयोग में लीन हो गए, तो अब घबराने वाली बात नहीं है। कषाय जनित बंध तो है बट उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, और उस बंध में कंट्रोल नहीं है इसलिए कोई बात नहीं है। और योग तो ऐसा है कि वो चौदहवें गुण स्थान में चला जाएगा, तो उसमें तो कुछ करना नहीं, योग से तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो शुरू की तीन चीजों को टैकल करना, और हमारे लिए फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चैलेंज इज टू टैकल मिथ्यात्व। आप मिथ्यात्व को छोड़ के बाकी दुनिया भर की मेहनत करोगे तो यू आर नॉट डूइंग इट राइट, और ये कभी काम नहीं आने वाला। मिथ्यात्व को सही करने के लिए क्या करना है, बहुत बहुत दृढ़ श्रद्धान करना है, निर्णय करना है। स्वाध्याय से नहीं होगा ये काम, स्वाध्याय निर्णय के साथ होगा तो काम होगा, नहीं तो वो पढ़ाई हो जाएगी बस। तो ये बहुत निर्णयात्मक, भावनात्मक, बहुत बहुत विचार करके संसार के स्वरूप का, भोगों के स्वरूप का, ज्ञान के स्वरूप का, छह काय के जीव जो हमको दिखते हैं, जितने दिखते हैं उन सबको देखकर उनके प्रति दया करुणा, उनको समझना क्या चीज है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ओके, एनी क्वेश्चंस? हेलो,
आई एम ओके। दूसरे किसी को? समीर रिजुल, यू हैव एनी क्वेश्चन?
हाँ, आई थिंक इनकी डेफिनेशन शायद सबको क्लियर नहीं होंगी, तो मैं एक बार डेफिनेशन रफ रफ वेरी इजी वे में बताता हूँ। मिथ्यात्व तो उल्टी मान्यता हम सबको पता है। अविरति इज व्रत नहीं लेना, मतलब जब हमने कोई नियम नहीं लिया, वो अनुव्रत भी हो सकता है, महाव्रत भी हो सकता है, ठीक है? तो व्रत होना ये विरति, और व्रत नहीं होना ये अविरति। तो अविरति किस गुण स्थान तक होती है? चौथे गुण स्थान तक। पांचवे से हो जाता है देश विरत, मतलब एक देश व्रत शुरू हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, अविरति के बाद प्रमाद। प्रमाद क्या होता है? जो व्रतों में हम चूक कर देते हैं, जैसे कि हमने, जैसे मुनिराज ने त्याग लिया है उनके छठ काय के जीवों के, ना त्याग करने की प्रतिज्ञा है, बट कभी कुछ हो गया तो उसमें दोष लग गया, तो ये उसमें प्रमाद हो गया, उनके पालन में आलस हो गया, सावधानी नहीं रही। और इसके बाद आता है नेक्स्ट इस कषाय, और कषाय मतलब जो हम सबको पता है क्रोधमान मायालोभ, इनकी इंटेंसिटी होती है अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संचलन। और उसके बाद आखिरी में आता है योग। योग यानी कि आत्मा में जो आत्मा के प्रदेशों का कंपन होता है, किसके निमित्त में? शरीर वाणी और मन के निमित्त से, मन वचन काया के निमित्त से। ओके,
हाँ,
एनी क्वेश्चंस? हेलो, नोबडी हैज एनी क्वेश्चंस? ओके, तो हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। मिथ्या अविरति अरुप्रमा अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा, राइट? ये वाली वहां पर लाइन है, करेक्ट? तो अब हम इसमें देखते हैं कि पांचों चीजों में सबसे डेंजर चीज क्या है। यहाँ पर पंडित जी ने उपयोगा शब्द क्यों यूज किया है, राइट? एक तो हमारे पास योग है ही, योग तो है ही, साथ में हमारे पास एक चीज होती है उपयोग। आपको पता है ज्ञान और उपयोग में कोई अंतर है क्या? एक ही चीज है ज्ञान और उपयोग?
उपयोग ज्ञान दर्शन
उपयोग में और ज्ञान में कोई अंतर है? हेलो,
हाँ, नहीं, हाँ, ज्ञान में अंतर
उपयोग एंड ज्ञान? एनीबडी कोई भी अटेम्प्ट करेगा, क्या उपयोग और ज्ञान एक ही चीज है या दोनों में अंतर है?
अंतर है।
हाँ, क्या अंतर है, कैसे रहेगा अंतर इनमें?
ज्ञान ज्ञान तो होता ही रहता है और उपयोग को लगाना पड़ता है।
ओके, ज्ञान होता ही रहता है, उपयोग को लगाना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि आत्मा बिना उपयोग के रहता है किसी समय?
ज्ञान अच्छा। मूल गुण है।
ओके,
और उपयोग
ओके।
उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार है।
बराबर, ठीक है। फिर
जब बोलते हैं कि उपयोग को पलटा वो आई कैन नेवर अंडरस्टैंड कैसे वो क्योंकि एक साइड बोलते हैं कि उसका व्यापार तो पर्याय में होता है, तो पर्याय को तुम पलटा नहीं सकते, और दूसरी दफा
तो ज्ञान की पर्याय को उपयोग कहते हैं, कैन बी से राइट?
हाँ, ज्ञान की पर्याय को भी उपयोग, क्योंकि ज्ञान और दर्शन उपयोग में दोनों लेते हैं ना, उपयोग ज्ञान दर्शन।
अगर
ज्ञान का भी बोल सकते, ज्ञान की पर्याय को उपयोग, परंतु जब बोलते हैं कि उपयोग को पलटा हो तो वो आई कैन नेवर, एक दफा एक साइड हम बोलते हैं कि वो पर्याय है और पर्याय को तो कुछ नहीं कर सकता है, वो क्रमबद्ध है, और फिर बोलेंगे कि पलटा हो तो आई वो मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है। पलटा हो
तो मैं एक बार आपको एक और थॉट देता हूँ। एक और थॉट है, एक आत्मा के अंदर चैतन्यता है, चेतनता है, और एक उपयोग है। तो चेतनता में हम जब चेतना की बातें करते हैं तो हम ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना की बात करते हैं। जब हम उपयोग की बात करते हैं तो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग की बात करते हैं, राइट? इन सब में कोई डिफरेंस है क्या? आप लोग सोचिए, मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, प्लीज। हाँ, आप लोग सोचिए, आई जस्ट जॉइन बैक।
उषा बेंता में बोलो।
મને તો લાગે છે કે જ્ઞાન ને ઉપયોગ તેમ જેવું લાગે, કારણ કે જ્ઞાન નો વ્યાપાર તેને જ ઉપયોગ કહે છે, જ્ઞાન જે થાય છે પર્યાય, એમાં આપણે શું કરી શું જાણીએ છીએ, શું કરીએ, ઉપયોગ ક્યાં લગાવીએ છીએ, એટલે આમ સરખું લાગે ને આમ જુદું. અને છે ને મારો એક આપણે એ છે મારો નેફ્યુ છે ને, તો એ પૂછતો હતો કે એનો ઉપયોગ નામ કેમ કે છે, એનો ક્વેશ્ચન, એટલે આ અનુભવજીને પૂછવું પડશે કે એનો ઉપયોગ નામ
પૂછો. હા પૂછો.
આઈ કુડન્ટ આન્સર ઇટ, કારણ કે એ છે ને શ્રીમદ રાજચંદ્ર ને બધો અભ્યાસ કરે છે, એટલે આ બધા તો અભ્યાસ નથી એમને બહુ કઈ બહુ, પણ હવે એમના અભ્યાસ એટલે શું છે કે આપણે ઘણી વાર હું એને સમજાવું છું તો ઘણી વાર ખ્યાલ નથી આવતો. મેં તો એને કીધું કે જ્ઞાનનો વ્યાપાર છે અને ઉપયોગ કે, એટલે જ્ઞાનની પર્યાય છે, તો ઉપયોગો લક્ષણ કહે છે ને, એટલે એને લક્ષણનું પૂછેલું કે આને ના ઉપયોગો લક્ષણ એટલે શું. મેં કીધું જ્ઞાનનો વ્યાપાર છે એટલે તેને મેં કીધું કે છે ઉપયોગ કે છે એને, તો પછી તો કે ઉપયોગ નામ કેમ એનું પાડ્યું છે, તો જ્ઞાન ની પર્યાય છે, તો પછી એને કહે ને કે જ્ઞાન જ કેવું જોઈએ ને, ઉપયોગ નામ શું કામ આપ્યું. મેં કીધું જે રીતે આપણે વ્યાપાર કરીએ, ધારો કે આપણું બેંક બેલેન્સ હોય તો પૈસા તો ત્યાં છે, પછી એમાંથી આપણે જે લઈએ બહારની આપણે કાઢીએ એમાંથી, અને એનું જે પણ કંઈ કરીએ વ્યાપાર, એટલે વ્યાપાર એટલે એનું કંઈ યુઝ કરીએ આપણે કશું પણ, કે આપણે એનો મોજ મજામાં વાપરા, કે ઘર લીધું કે બિઝનેસ કર્યો, તો એનો વ્યાપાર કહેવાય ને, કે આપણે એનો ઉપયોગ શું કર્યો આપણે, એને એ રીતે જ્ઞાનની પર્યાય આપણી નીકળે છે, તો એનો ઉપયોગ શું કર્યો આપણે, ક્યાં લગાવ્યો એ ઉપયોગ, એટલે છે તો, એટલે આમ એક રીતે એવી રીતે પણ વિચારાય કે ઉપયોગ આપણે ક્યાં લગાવ્યો. પણ હવે જ્ઞાન તો જ્ઞાન છે, હવે આપણે અજ્ઞાન છે એટલે ઉપયોગ બધો બહાર આપણો જાય, જ્યારે ઉપયોગ અંદર લઈ જઈએ ત્યારે સમય દર્શન થાય કે અતિન્દ્રિય આનંદ થાય, એટલે I couldn't answer, એટલે he was not satisfied my answer. એટલે તો કે હવે ઉપયોગ નામ કેમ, મેં કીધું બધી જ પછી તો બહુ બધા એવા ક્વેશ્ચન થાય ને કે આત્મા કેમ નામ પાડે,
અનુનામ કે
કામ પડ્યું ને જો થોડું તો ભાવ ભાષણ અંદર થવું જોઈએ મેં કીધું ભાઈ અંદર ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ શું કહેવા માંગે છે મૂકું બધાનું જે રીતે આપણે બધું પૂછ એ તો નહીં ખ્યાલ એવું મને થયું હતું એટલે ખબર નથી એટલે અમને ખાસ મારે આ ક્વેશ્ચન મને પૂછવો છે કે ઉપયોગ કેમ ના
પૂછ્યો કેમકે અહીંયા આપણું નાનું ગ્રુપ હોય છે ને એટલે એક હું તો પૂછું
ના ના સરસ એમનો
એટલે હા એટલે ઉપયોગ એટલે કે એ જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાનની પર્યાય ક્ષણિક પર્યાય એટલે પર્યાયો મેં ક્ષણિક જ હોય ને
હેલો અનુભવજી આ ગયો અનુભવજી
હા કે હા હા
નહીં વો જ્ઞાન ઉપયોગ કા જો આપ પૂછ રહે થે ના તો મેરી સમજ મેં તો એસા હૈ કે જૈસે આત્મા આત્મા કે એક 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 મતલબ યુ નો જો ચેતન નામ કા ગુણ હૈ રાઈટ તો ઉસકા મતલબ જો વો ક્યા બોલતે મેરે મતલબ જ્ઞાન કે ઉપયોગ કા એક સબ કેટેગરી હુઆ એસા હૈ ના મતલબ જૈસે જ્ઞાન ઉપયોગ બોલતે કે ઉપયોગ દો તરહ કે હોતે રાઈટ એક તો જ્ઞાન ઉપયોગ ઓર એક દર્શન ઉપયોગ
કરેક્ટ
તો યે ઉપયોગ મતલબ વો ચેતન ગુણ સે કુછ રિલેટેડ હૈ ના જો જો ક્યા બોલતે કે જો ધ્યાન લગા કર ચેતન ગુણ કા જો કામ હોતા હૈ મુજે બરાબર યાદ નહીં રહી લેકિન
ઓર વો મતલબ ગુણ હે એક ચેતન ગુણ હે ઓર એક ઉપયોગ ગુણ હે રાઈટ યે દોનો અલગ અલગ ગુણ હે આપ યે કહે રહે હૈ
મતલબ ચેતન કમ્બાઈન્ડ જ્ઞાન ઓર દર્શન દોનો સાથ મે તો ચેતના બોલેંગે
ઓકે ओके
आप हमारी सारी इग्नोरेंस का जवाब दे दो
नहीं नहीं एक्चुअली प्रजास्तिकाय जी ग्रंथ में जब उन्होंने जीव द्रव्य को एग्जांपल देके समझा मतलब वो द्रव्य की व्याख्या करते हैं स्टार्टिंग में षट द्रव्य का वर्णन पंचास्तिकाय का वर्णन
कहां सॉरी कहां
पंचास्तिकाय पंचास्तिकाय ग्रंथ में वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देखो सत का विनाश नहीं होता और असत का उत्पाद नहीं होता ये कंटेक्स चलता है तो वहां पर वो एग्जाम्पल के लिए जीव द्रव्य देते हैं और जीव द्रव्य को पहले वो डिफाइन करते हैं तो उन्होंने बोला जीव द्रव्य के पास दो गुण होते हैं और चार पर्याय होती है मतलब वहां समझाने के लिए दो गुण कौन कौन से होते हैं पहला गुण इस चेतन गुण एंड दूसरा गुण इस उपयोग गुण राइट चेतन गुण और उपयोग गुण और पर्याय कौन सी बोली उन्होंने चार गति वाली नर नारक वाली पर्याय उन्होंने असमान जाति द्रव्य पर्याय को वो गति विशेष की पर्याय को बोल दिया वो ठीक है और वहां पर पहले ये भी बताया कि अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय होती हैं तो वो अलग अलग होती है तो हमने बहुत बाहर की पर्याय को लिया विभाव व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्यायों के मिक्सचर को लिया तो बट वहाँ क्वेश्चन ये उठा है कि भाई फिर ये चेतना और उपयोग ये अलग अलग चीजें क्या तो उन्होंने चेतना के अंदर तीन चेतनाओं को डाला कर्म चेतना ज्ञान चेतना और कर्म फल चेतना और उपयोग के अंदर काम किया दो चीज का किस किस का दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग हम एकदम बेसिक फंडामेंटल से चलते हैं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि उपयोग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है राइट क्योंकि जीव का उपयोग लक्षण ही है उपयोग लक्षण से जीव पहचाना जाता है राइट उपयोगो लक्षणम तो अब सबसे पहले हम फंडामेंटली दो गुण खड़े करते हैं हमने उपयोग और चेतन गुण अलग अलग नहीं पढ़े कभी हमने दो गुण पढ़े आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण होता है आत्मा में राइट ज्ञान दर्शन को दोनों को मिला के चेतना बनती है तो लेट्स फर्स्ट एस्टैब्लिश टू एट्रीब्यूट्स ऑफ सोल फर्स्ट इज ज्ञान सेकेंड इज दर्शन ठीक है ज्ञान और दर्शन इन दोनों के काम एक से हैं इन दोनों के पास डिपार्टमेंट जो है ये दोनों ये जो बड़े पेक्चुलियर गुण है ऐसा गुण किसी और द्रव्य के पास है ही नहीं ऐसे किसी गुण का कुछ थोड़ा आंशिक भी किसी भी अन्य द्रव्य में ऐसी क्वालिटी नहीं है इन दोनों के गुणों का काम है प्रतिभास करना प्रतिभास मतलब टू परसीव तो दो तरीके से परसेप्शन हो सकता है प्रतिभास दो तरीके से हो सकता है वन इज साकार मतलब यू नो एवरीथिंग कि आप क्या देख रहे हो, और वन इज निराकार जिस इन विच यू नो क्या कुछ तो है, राइट right? एक एक परसेप्शन ये कि कुछ है, एंड जब यू हैव दिस परसेप्शन इट सडनली आस्क दैट क्यूरियोसिटी कम्स आउट कि क्या है. व्हेन यू से कुछ है तुरंत एक पीछे से क्वेश्चन आता है कि क्या है. करेक्ट. हेलो. ठीक है. तो दर्शन का स्टेज वाइज काम था. दर्शन का काम था कि वो परसीव करेगा, वो एक फाउंडेशन देगा, कि वो एक आपको पॉपुलेशन दे देगा कि हम इस दायरे पे बैठे और हमें लग रहा है यहाँ पर कुछ है. और तुरंत जैसे ही क्वेश्चन राइज होगा कि क्या है और उसकी खोज शुरू होगी, तो दर्शन विल टेक अ बैक सीट और ज्ञान वहां पर मेन व्हील पर आ जाएगा और वो बोलेगा अच्छा ओ यहाँ पर तो एक अल्मेरा है, यहाँ का वेदर बहुत वार्म है. तो ये कौन बता रहा है? दर्शन बता रहा है, ज्ञान बता रहा है. ज्ञान ने उसमें आकार दे दिया. दर्शन इज लाइक अ स्क्रीन, एक प्लेन स्क्रीन है, वो बताते हैं कि आपको यहाँ देखना है. दर्शन विल ओनली कवर द एरिया दैट यू वॉन्ट टू परसीव इन, एंड देन ज्ञान विल स्पेसिफाई दैट वॉट ऑल लाइज इन दैट एरिया. हेलो. आर वी ऑन द सेम पेज? ठीक है, अभी धीरे धीरे चलते हैं हम इस पे. तो इसके पहले कुनकुन आचार्य देव ने दो बातें बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कराई. उन्होंने ज्ञान दर्शन को पढ़ाने से पहले दो चीजें बताई कि इस जगत में जितना कुछ भी है वो सब क्या है? द्रव्य है. क्यों? क्योंकि इसकी सत्ता है. तो इस जगत का मूलभूत जो लक्षण होता है, बेसिक फाउंडिंग जो इस जगत का लक्षण है जिससे उसको समझ सकते हैं हम जगत को, वो है सत, यानी सत्ता. राइट right? सत्ता एग्जिस्टेंस. एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो जिस किसी के पास भी सत्ता है वो द्रव्य होगा. दैट्स द ओनली डेफिनेशन ऑफ द्रव्य. जिसकी सत्ता ज्ञान दर्शन में ही होगी तो उसको हम जीव बोल देंगे. लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव बनने से पहले आप द्रव्य हैं क्योंकि आपकी सत्ता है. फर्स्ट यू आर, आप हो, एंड देन अच्छा आप जीव हो. राइट right? जीव बाद में आएगा. जीव इज अ विशेषण, वो बाद में आपका कैटेगराइजेशन. बट फर्स्ट थिंग इज दैट यू आर, यू एग्जिस्ट. ठीक है. तो इस जगत का पहला मूलभूत लक्षण है, जैसे जीव द्रव्य का लक्षण ज्ञान दर्शन है, ऐसे ही जगत का लक्षण सत्ता है, सत है. जैसे जीव द्रव्य को ज्ञान दर्शन से पहचाना जाता है, ऐसे विश्व नाम की एक बड़ी वस्तु को, विश्व नाम की एक बहुत बड़ी मशीन को सत नाम से पहचाना जाता है, सत लक्षण से पहचाना जाता है. ठीक है. सो नाउ जस्ट लुक, जैसे आप एक जीव द्रव्य को देखते हो तो आप उसमें क्या सोचते हो? कि एक बहुत बड़ी चीज है, सिंगल एक द्रव्य है. उस द्रव्य के पास क्या है? ज्ञान दर्शन है, वो जीव है. ऐसे ही अभी पूरे विश्व को, पूरे जगत को आप एक एक मशीन मानो, बहुत बड़ी मशीन एक है पूरी की पूरी. तो उसमें आप क्या देखने जाओगे एज अ लक्षण? कि उसमें कुछ है कि नहीं है, सत है कि नहीं है, उसमें सत्ता है कि नहीं है. तो यदि सत है, मतलब समथिंग दैट यू हैव सीन, आपने कुछ भी देखा है, यदि वो चीज है मतलब पूरा विश्व है. एक वस्तु की सत्ता सारे विश्व की सत्ता की द्योतक है. कैसे? तो अब हम इसको एक नाम देंगे, हम थोड़ा साहित्यिक नाम देंगे जो आचार्य देव ने दिया. उन्होंने सत्ता के दो विभाग किए, एक महासत्ता और एक अवांतर सत्ता. कौन कौन से दो विभाग हुए सत्ता के?
महासत्ता और अवांतर सत्ता.
महासत्ता एंड अवांतर सत्ता. देखने ये दो विभाग कितने ज्यादा साइंटिफिक है, वो समझाना है उनको जीव द्रव्य के दर्शन और ज्ञान गुण, और वो पहले विश्व का पूरा ढांचा बता रहे हैं. तो सत्ता मतलब ये जो सत हम बोल रहे हैं ना, एग्जिस्टेंस, ये सत के दो टाइप है. दो टाइप नहीं है इनको, इसको समझने के दो तरीके हैं. ठीक है, इसको देखने के, ये एट अ टाइम महासत्ता रूप भी है और अवांतर सत्ता रूप भी है. कैसे? महासत्ता मतलब जो आप, अच्छा आप कोई मुझे बताएगा अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल. हम जानते हैं तो जानने का प्रोसेस कैसा होता है, छद्मत के ज्ञान कैसा होता है, ये आप बताएंगे. छद्मत के और केवली भगवान के जानने में अंतर क्या है? एनीबडी? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. एक छद्मस्थ है यानी जिसके अल्प ज्ञान है, और एक सर्वज्ञ है. तो अल्पज्ञ और सर्वज्ञ, इन दोनों के जानने की प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? जानते तो दोनों है, दोनों जीव द्रव्य, नो डाउट, बट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू, लाइक द बिटवीन द प्रोसेस ऑफ द टू? जैसे जानते हैं इस प्रोसेस में कोई डिफरेंस है क्या?
हमारे दर्शन, पहले दर्शन दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है, केवल के एक साथ दर्शन और ज्ञान होता है।
ओके, बराबर। हमारे पहले दर्शन होता है और दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और केवली के दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। वंडरफुल, ठीक है, यही आंसर है इसका। क्या डिफरेंस है हम दोनों के? हमारे पहले दर्शन उपयोग होगा, फिर ज्ञान उपयोग होगा, दैट्स हाउ वी नो। करेक्ट, सो नाउ दैट, ये वाली लिंक को हम यहाँ पर लेके आते हैं, महासत्ता और अवांतर सत्ता में, ठीक है। आप जब जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ेंगे और उसमें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो जिस उपयोग में महासत्ता का प्रतिभासन होता है उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और जिस उपयोग में अवांतर सत्ता का प्रतिभासन होता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। दैट्स अ डेफिनेशन गिवन बाय गोपालदास जी बरैया, पंडित गोपालदास जी बरैया, राइट। अब कितना ज्यादा लिंक हो गया है, सब कुछ लिंक है, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट महासत्ता इज, व्हाट अवांतर सत्ता इज। आप जब एक घड़ी को देखते हो, वॉच, राइट, देयर इज अ वॉच है आपकी वॉल पर, एक लगी हुई है वॉच। आप जब उस वॉच को देख रहे हो कितना बजे, तो आप बोल रहे हो कि इट्स 7:30 AM राइट नाउ, ठीक है, 7:30 AM। आपने कितनी वॉच को देखा, एक वॉच को देखा, दो तीन को देखा? हेलो,
एक को देखा,
एक वॉच को देखा, एक वॉच को देखा। अच्छा, तो
कितनी
समय का ज्ञान हुआ आपको, कितनी वॉच के समय का ज्ञान हुआ आपको, किस किस की घड़ी में कितने बजने पता पड़ गया?
सारी घड़ी में वो ही वो एटलीस्ट
यूएस के टाइम जोन में आपकी वो चल रही होगी, GMT, IMT, ये सब में। बट वॉट एवर योर जोन इज, यू नो, एटलीस्ट लाइक, लेट्स से लाइक फॉर मी, एटलीस्ट इंडिया में तो इतनी बज रहे हैं जितने लोगों की घड़ी है, जितने लोगों के सेल फोन है, जितने लोगों के घर में है, रिस्क में है, जहाँ पर भी वॉच है, कंप्यूटर्स में है,
एवरीवेयर यही टाइम है
7:30, राइट। आप देख एक चीज को रहे हो एंड आपको पता हर चीज का पड़ रहा है, डू यू सी द ब्यूटी ऑफ इट, एक देखने के लिए। बट अभी हम इसको एक साइड रखते हैं, दैट्स द सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज, आप घड़ी को देख रहे हो तो आपको घड़ी कितनी दिखती है, एक दिखती है। बट वो घड़ी एक नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। वो एक अंदर से, वहां पर उसकी एक सुई है, बहुत सारे हैंड्स हैं उसके, तीन हैंड्स हैं उस घड़ी में, अंदर एक बैटरी लगी हुई है, एक उसको सिस्टम है पूरा, उसका पैनल है, उसमें अलग अलग उसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 till 12, एक ग्लास लगा हुआ है बाहर। तो दैट घड़ी, दैट वॉच, एज अ वॉच यू सी इट, सो इट्स अ वन मशीन, एक मशीन है। बट वेन यू वॉन्ट टू एक्चुअली कैटेगराइज इट, तो वो एक चीज की नहीं बनी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप वॉच को देखते हो एज अ होल विदाउट एनी डिफरेंस, आप उसमें कुछ भी कैटेगराइजेशन नहीं करते हो, यू आर लुकिंग एट महासत्ता, आप सारे सारी चीजों को एक देख रहे हो। ऐसे आप पूरे विश्व, पूरे विश्व को एज अ एक देखो, महासत्ता कितनी होती है, एक होती है, देयर इज ओनली वन, दो भेद ही नहीं है वहां पर, क्योंकि दर्शन में भेद करने का टाइम ही नहीं है। महासत्ता का जो विषय है जानने वाला है उस दर्शन उपयोग में, भेद करने की फुर्सत नहीं, जहां भेद होता है वहां ज्ञान उपयोग शुरू हो जाता है। तो आपने एक बहुत फेमस शब्द सुना होगा, सोहम, सोहम, हाँ। सुना है आपने,
हाँ।
पंडित जनक राय जी का भजन है, सोहम सोहम जपिए हो, ये वेदांतों में भी बहुत चलता है, हरे रामा हरे कृष्णा वाले भी बहुत बोलते हैं, एवरीबडी सेज इट, सोहम। सोहम मतलब सह अहम, मतलब ये मैं, ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, ये कौन है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, राइट। तो उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, उनको ये वो लोग ये बोलते हैं कि सोहम मतलब कि जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म का टुकड़ा हूँ। बट एक्चुअली जो ब्रह्म की कल्पना है, वो ब्रह्म की कल्पना इज नथिंग बट महासत्ता। हर जगह क्या है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, मतलब हर जगह सत्ता ही सत्ता है, जिसके हम बने उसकी वो बने, हम सब एक सत्य से ही बने हैं, एक सत्य से ही बने ना, हमारे अस्तित्व से ही हम सब बने हुए हैं। जितना पुराना मैं हूँ उतने पुराने आप हो, जितना पुराना मैं हूँ उतने पुराने पहाड़ हैं, नदियां हैं, आकाश है, राइट। एवरीथिंग इज एज ओल्ड एज वी आर, देयर इज नो बिगिनिंग दैट वी कैन ट्रेस, इट इज द ओल्डेस्ट मैटर ऑफ द वर्ल्ड। नो, एवरीथिंग इज एज ओल्ड एज वी आर, राइट? तो हम सब में कॉमन क्या है? हमारी एग्जिस्टेंस. दैट्स अ डिफरिंग क्वेश्चन कि हम दोनों की एग्जिस्टेंस एक सी है कि अलग अलग है. नहीं, वी हैव अवर इंडिविजुअलिटी. मैं अलग हूँ, आप अलग है, बट एट द सेम टाइम हम दोनों की सत्ता में कोई डिफरेंस नहीं दिखता. जब से मैं हूँ तब से आप हो, तो हम लोगों की जो सत्ता है, सत है, दैट इज कॉमन, करेक्ट? तो जब आप ओनली सत को देखते हो, सिर्फ के है, इट एग्जिस्ट, इसकी अपेक्षा मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, इसलिए महासत्ता एक होती है, ओनली वन. ठीक है, यानी कि ये बताने के लिए कि आप इतने भेद करते हो कि ये कौन है, ये कौन नहीं है, ये सारे भेद आप करते हैं, तो ये वाले भेद से क्या फायदा है हमको? हमको तो निर्विकल्प होना है, राइट? सो टू बी निर्विकल्प हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये सारे जितने विकल्प हैं, जितने भेद हैं, इन सबको छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा. तो उसको छुड़ाने के लिए महासत्ता नाम का कंसेप्ट लेके आए कि भाई इस जगत में विकल्प करने जैसा, मेरा तुम्हारा स्व पर, ये सब भेद करने जैसी चीजें ही नहीं है. वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव. अभी आप देख रहे हो आसपास क्या क्या देख रहे हो आप, व्हाट ऑल यू कैन सी, आप आजू बाजू क्या क्या देख सकते हैं?
सारी चीजें घर में होती है, वो सारी चीजें देखते हैं. कंप्यूटर
है, क्या दिख रहा है आजू बाजू, क्या दिख रहा है आपको?
कंप्यूटर है, टेलीफोन है, पेपर है, कैलेंडर है, स्टिकर है.
आई थिंक एवरीबॉडी विल हैव समथिंग टू सी अराउंड. ठीक है, ओके. तो लाइक आप थोम लिख सोच के बताइएगा, आर यू लुकिंग एट द कंप्यूटर और यू आर लुकिंग दैट इमेज ऑफ द कंप्यूटर दैट इज इन योर ज्ञान, आपके ज्ञान में जो बनी है?
करेक्ट.
तो आप कंप्यूटर को देख रहे हो कि अपने ज्ञान की स्क्रीन को देख रहे हो?
ज्ञान को,
ज्ञान को देख रहे हो. तो एक्चुअली महासत्ता का कहना ये है कि आपने कभी ज्ञान के बाहर कदम ही नहीं रखा है कि आप इस जगत में भेद करोगे कोई दूसरी चीज है. हर जगह ज्ञान ही ज्ञान तो है. आपने ज्ञान के अलावा देखा क्या? आपने अपने आप को देखे, ज्ञान जो आप स्वयं ज्ञान हो, दैट्स योर रूप, राइट? दैट्स हाउ यू लुक. आप ज्ञान ज्ञानमय हो, आप ज्ञान शरीरी हो, राइट? सो आपने एक ज्ञान के अलावा दूसरी चीज जब देखी नहीं, तो व्हाट मेक्स यू से कि इस जगत में बहुत सारी चीजें हैं? व्हाट इज द प्रूफ दैट यू हैव कितनी सारी चीजें हैं? मतलब प्रूफ तो है, ऑब्वियसली है, सामने वो दिख रही है वस्तु, वो ज्ञान की, लेकिन स्वच्छता है. लाइक यू हैव नॉट गॉन आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ योर ज्ञान टू परसीव एनीथिंग. तो आपने तो आज तक सिर्फ एक के साथ ही व्यापार किया, आपने तो एक को ही देखा है. उस एक में आपको अनेक चित्र दिखते थे, तो आपको लगता था इतने सारे लोग हैं मेरे आसपास. बट यू आर लिटरली टॉकिंग टू योर सेल्फ ओनली, यू आर लिटरली यू नो क्राइंग एट योर सेल्फ. आपको दूसरों को देख के रोना आ रहा है? नो, यू आर लुकिंग एट योर ज्ञान एंड योर क्राइंग. आप दूसरे के जोक पर हंस रहे हो? नो, यू आर लुकिंग एट योर ज्ञान एंड योर लाफिंग. सो एक्चुअली महासत्ता का जो साइंस है, इट्स वेरी ह्यूज. वो उसका अल्टीमेट एम इज टू मेक अस निर्विकल्प, कि हम क्यों व्यर्थ में दूसरी वस्तु के बारे में सोचते हैं, जब उसकी सत्ता भी तब है जब मेरी सत्ता है. एंड वी डू नॉट हैव एनी, मतलब उसकी सत्ता है तो उसको कोई थ्रेट नहीं, क्योंकि जिसके पास सत्ता है उसका विनाश नहीं होता. तो उसकी मैं केयर करूँ, उसका रख रखाव करूँ, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट. और मैं उसके पास जा ही नहीं पा रहा हूँ. द ओनली मीडियम दैट आई हैव टू गो टू दैट थिंग इज माई ज्ञान. एंड बियॉन्ड ज्ञान आई कैन नॉट गो, दैट्स माई बाउंड्री. तो मैं उसके बारे में 50 विकल्प कर भी लूंगा, तो मुझे उसको जानने का फायदा क्या है? सो दैट्स महासत्ता, दैट्स द एम दैट वी हैव टू रीच. बट महासत्ता में तुरंत
तो, वो विकल्प भी तो ज्ञान ही होएगा अनुभव जी.
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट्स व्हाट. इसलिए तो निर्विकल्प होना है. उस विकल्प का कुछ, वो दैट्स एन अननेसेसरी एक्सरसाइज. वो अपने श्रम का क्या बोलेंगे, एक मिसयूज है. वाई आपको फालतू में हम कुछ काम नहीं करते ना, हम फालतू में तो नहीं, यदि इवन इफ वी आर गोइंग फॉर अ जॉब, तो एकदम पतला आदमी जो एकदम जिसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है और जो भी बीमारी से होता है, ही विल नॉट गो फॉर जॉब, राइट? व्हाई? ही डजंट रिक्वायर इट, राइट? किसी के पास है फैट बर्न करने के लिए, ही विल गो. एनीथिंग दैट वी डू वेरी कैलकुलेटिवली कि वेदर इट शुड बी डन और शुडंट बी डन, करेक्ट? तो जब ये विकल्प आपका कुछ अकिंचित कर है, विकल्प में कुछ नहीं हो रहा है, विकल्प से कुछ नहीं हो रहा है, then isn't it is an unnecessary exercise? And if it is an unnecessary exercise, why are we doing it? And that's how from vikalpa to nirvikalpa, this journey is whole moksha marg. Aap vikalp dasha se nirvikalp dasha ki taraf jaate ho, yahi to moksha marg hai. Correct? Hello. बहुत सारी बातें हो गई आज, हमें उपयोग के बारे में वापस फिर से करनी है. आई एम जस्ट गिविंग द फाउंडेशन. फर्स्ट इज महासत्ता. महासत्ता मतलब जब आप सिर्फ सत को देख रहे हो, सो हम, ये मैं हूँ, आप हो मतलब सब है. आप यू डू नॉट क्वेश्चन केयर, नहीं यार ये तो पुद्गल द्रव्य है, इतना नहीं सोचो आप. आप यदि पुद्गल द्रव्य को जान पा रहे हो तो वो पुद्गल द्रव्य को प्रकाशित नहीं कर रहा है आपका ज्ञान. क्या एग्जाम्पल क्या है? जो दीपक है, दीपक के कारण आपको एक एक आपके यहाँ बल्ब है, उस बल्ब के कारण आपको सब कुछ दिख रहा है, आपका कंप्यूटर दिख रहा है, आपके यहाँ आपकी वॉल्स दिख रही हैं, पेंटिंग्स दिख रही हैं, दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? करेक्ट. तो हमको लगता है कि बल्ब के कारण ये पेंटिंग्स दिख गई मुझे, मुझे कंप्यूटर दिख गए. बट ज्ञानी को दिखाना ये है कि पेंटिंग्स और ये सब दिख रहे हैं क्योंकि बल्ब है. इट्स नॉट अदर वे. You are able to see all of this because of that existence of that bulb. The electric light is still on. So, ये जितने भी दिख रहे हैं पदार्थ, ये अपनी प्रसिद्धि नहीं करते हैं, ये इनके प्रकाशक की प्रसिद्धि करते हैं. ऐसे जितने ये दिख रहे हैं, आप पुद्गल तक मत जाओ कि मुझे देखो एक कंप्यूटर दिख रहा है. नो यार, मुझे ज्ञान दिख रहा है तभी तो कंप्यूटर दिख रहा है.
ये मेरे ज्ञान की प्रसिद्धि करते.
ये समय सार में आई थिंक 294 गाथा का शायद विषय, आई एम नॉट श्योर अबाउट द गाथा नंबर, बट ये ज्ञान की प्रसिद्धि करते हैं, नॉट ज्ञान गेय की प्रसिद्धि करता है. वो दिख रहा है मतलब, या ज्ञान इज वर्किंग, मैं प्रकाशमान. मतलब बल्ब खुद बिना जले दूसरों को कैसे दिखा सकता है? तो फर्स्ट लाइट कम्स टू बल्ब इटसेल्फ, दैट्स ज्ञान स्वपर प्रकाशक. करेक्ट. ठीक है, तो महासत्ता का सिर्फ इतना कहना है कि आपको यदि सत्ता दिखती है तो क्वेश्चन मत करो किसकी है, कहाँ की है. सत्ता है मतलब है. दैट्स फर्स्ट काम ऑफ दर्शन. दर्शनोपयोगी ये बोलता है कि कुछ है, कुछ है पे जब आप बहुत अभ्यास से पहुंच जाते तो दैट कन्वर्ट्स इनटू सोहम, ये तो मैं हूँ, राइट? बट वो बहुत लेटर स्टेज है. जब आप महासत्ता पर क्वेश्चन करने लगते हो, मतलब महासत्ता को आपने जाना कुछ है, तो दर्शनोपयोग हो गया. एंड देन यू स्टॉप दैट इट, कि आपको लगा कि यार कुछ है मतलब मुझे जानना चाहिए क्या है, तो तुरंत यहाँ पर भेद होने स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, इज इट वेग और क्या है, व्हाइट वॉल है कि ब्लैक है, तो आप ये सोचने लगे, राइट, कि क्या है. तो ये अवांतर सत्ता हो जाएगी. महासत्ता में कैटेगराइजेशन करना, ये अवांतर सत्ता कहलाती है. ठीक है, इसको स्वरूप अस्तित्व भी कहते हैं और महासत्ता को सादृश्य अस्तित्व कहते हैं. सादृश्य अस्तित्व एंड स्वरूप अस्तित्व. सादृश्य मतलब एक सा दिखना एंड स्वरूप मतलब इंडिविजुअलिटी. इंडिविजुअलिटी यानी आप भेद पर आ गए कि क्या है, ये जीव है कि पुद्गल है, ये हॉर्स है कि एलिफेंट है, ये महावीर भगवान है या ऋषभ देव है. सो यू आर कैटेगराइजिंग नाउ, ये अवांतर सत्ता. महासत्ता का एकदम वीक एग्जाम्पल, अरे यार ये तो अरिहंत भगवान है. जैसे कि आपने मूर्ति देखी, यू हैव नॉट थॉट अबाउट कौन से भगवान है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी सब निराकार होता है, इसमें कोई इसका रूप नहीं है. ठीक है, हेलो. तो महासत्ता और अवांतर सत्ता आप लोग इसका थोड़ा सा पढ़िएगा. वील टेक इट फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास. आई थिंक हम ज्ञान और चेतना को समझेंगे, तो वील हैव टू अंडरस्टैंड तीन प्रकार की चेतनाएं, कर्मफल, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, एंड उसके साथ दो प्रकार का उपयोग. एंड देन वी कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड उपयोग एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू. हमारे पास ज्ञान पर कंट्रोल नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल हमारा ज्ञान, वी कैन कंट्रोल हमारा उपयोग. वील सी, वो देखेंगे हम कैसे होगा वो. ठीक है, एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज?
उषा बेन, तुम्हारा क्वेश्चन पूछो.
हाँ,
अनुभव जी उपयोग नाम क्यों पड़ा उनका, उपयोग उपयोग नाम?
देखो हिंदी में उपयोग का मतलब होता है यूजफुल, राइट? ये उपयोग की वस्तु है, मतलब यूजफुल है, राइट? मैं पहले बहुत ही ज्यादा वेग मतलब बता रहा हूँ इसका. सो दुनिया में काम की चीज सिर्फ उपयोग है, तो हमने यूजफुल थिंग इज उपयोग ओनली, तो उसको नाम दे दिया होगा, बट दैट्स नॉट द राइट आंसर. उपयोग, उपयोग, योग मतलब जुड़ान, जोड़ना, ठीक है? योग इज द एडिशन, ठीक है? आप एक अमूर्तिक वस्तु है, यू आर इनविजिबल, बट आप मूर्तिक वस्तुओं को देख पाते हैं, और अमूर्तिक वस्तु का भी ज्ञान करने की आप में शक्ति है, राइट? तो आप एक अमूर्तिक वस्तु है, आप नहीं दिखते, अशरीरी है आप, आपका जो ज्ञान है दैट इज इनविजिबल, बट वो विजिबल चीजों को देख पाता है. तो आप दो अलग वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, तो आपको उसमें ज्ञान लगाना पड़ेगा ना,
कि
जो जोड़ जुड़ान हो रहा है, देयर इज सम बॉन्डिंग हैपनिंग. नो, इट्स नॉट टच वाला बॉन्डिंग, बट यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट ऑब्जेक्ट. उसका प्रमेयत्व गुण आपको परमिशन दे रहा है कि भाई मुझे जान लो, और आपका ज्ञान गुण बोल रहा है ओके ट्रांजेक्शन डन, तो आप जान पा रहे हो उसको. तो यहाँ पर कनेक्शन हुआ मूर्तिक अमूर्तिक में, अमूर्तिक अमूर्तिक में आप स्वयं को भी जान रहे हो. तो देखो ये कितना बड़ा वंडर है, आप अनादि काल से जीव हो, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते, करेक्ट? करेक्ट. तो हमें अपने आप को जानने के लिए अपने आप से मिलना पड़ता है ना, वी हैव टू एड अवर सेल्फ टू अवर सेल्फ, हमें अपना अपने में योग मिलाना पड़ता है. तो उपयोग इज प्रतिभास करना, प्रतिभास करने के लिए, जानने के लिए आपको उस वस्तु की समीपता करनी पड़ती है, समीपता मतलब आपको उससे जुड़ना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड उपयोग, ठीक है? जोड़ रूप है ये, ठीक है? ज्ञान को ज्ञान में मिलाना, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में, अपने उपयोग को अपने उपयोग में लगाओ, ज्ञान में ज्ञान को बिठा लो, मतलब ये सारी हम जोड़ने की बातें कर रहे हैं. यू रिमूव इट फ्रॉम समवेयर एल्स एंड यू एड इट ऑन टू योर सेल्फ, करेक्ट?
हाँ जी,
ठीक है, ओके. एनी क्वेश्चंस?
नहीं, किसी ने पूछा
बहुत अच्छा, लेकिन ये बात के उपयोगी वस्तु तो उपयोग है, कहाँ
किसी ने पूछा कि उपयोग नाम क्यों है, इसलिए मैं मुझे नहीं आता था कैसे आंसर करना. मैंने बोला तो उपयोग इसलिए कि हम इनका व्यापार करते हैं ना, ज्ञान की पर्याय होती है हमारी निकलती है, तो व्यापार कहाँ हम लगाते हैं, तो उनको उपयोग बोलते हैं ना, हम क्या करते
हैं, वही 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 जोड़ान में ट्रांजेक्शन हो रहा है, दो चीजों के बीच में ट्रांजेक्शन है, मतलब ज्ञान बिना जुड़े नहीं जान सकता, बट वो जोड़ना ऐसा नहीं कि उसको उसको टच करना पड़ेगा वो ज्ञान, बट लाइक ट्रांजेक्शन वो उस द्रव्य में प्रमेयत्व नाम का गुण होना चाहिए, प्रमेयत्व गुण से वो द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बन सकता है, और आपके अंदर ज्ञान गुण होना चाहिए, दोनों के लिए क्वालिटी मैच हो गई, उसके पास जानने में आने की शक्ति है, इट गिव्स यू परमिशन टू नो, एंड आपके पास जानने की शक्ति है, देन ओनली यू कैन नो इट. फिर आप जिसमें उपयोग लगाएंगे तो आप जान पाएंगे. जैसे भी हमारे आजू बाजू बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, उन सूक्ष्म जीवों के अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण भी है और हमारे पास ज्ञान भी है, लेकिन हम उनको नहीं जान पा रहे. तो हमारे एक तो ज्ञानावरण का इतना ज्यादा उदय है कि हमारे ज्ञान का विषय वो नहीं बन रहे, और दूसरा हम विचार पूर्वक भी उनको जानने में निमित्त नहीं बना रहे, हम बैठ नहीं रहे उनके बारे में सोचने के लिए, तो वैचारिक भूमिका में भी हम उनसे नहीं जोड़ना चाह रहे, ठीक है? एनी क्वेश्चन? आई थिंक आई हैव एक्सीडेड द टाइम ऑलरेडी. हम जिनमें स्तुति करते हैं, आप लोग उपयोग और ज्ञान के बारे में पढ़िएगा, फिर इनका हमको पता पड़ेगा कि आश्रव से कितना गहरा रिलेशन है, ठीक है? आप लोग थोड़ा खुद भी पढ़िएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे.
हाँ, बहुत वेरी नाइस, थैंक यू.
ओके ओके, जिन वाणी सचिव बोलता हूँ मैं, जा वाणी के ज्ञान से पूछे लो का लो, तो वाणी मस्तक नमो सदाते तुम तो पाणी मुखा
थैंक यू अनुभव जी. जय जिनेन्द्र.
थैंक यू. जय जिनेन्द्र.
जय जिनेन्द्र. थैंक यू. वेरी इंटरेस्टिंग.
हाँ, ज्ञान गुण ने समझवानू छे ने बराबर.
हाँ,
आपड़े ज्ञान पकड़ा जाए तो आपड़े ज्ञान थे आत्मा.
પણ આ કે આવી રીતે એને મહાસત્તા અને અવંતર સત્તા લઈને આવી રીતે આમ જ્ઞાન કુંડ ને કહ્યું છે. ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. હમ હમ
યા એટલે એમનું એટલે સબ બધું આજુબાજુ પણ બધું સ્કૂલ ડિટેલ માં સરસ સમજાવે. પેલે બિગ થિંગ છે કે ભાઈ આ કઈ રીતે આપણે જાણીએ કે અવંતર સત્તા અને મહાસત્તા તો જાણીએ, પણ પછી જ્ઞાન ને એની સાથે
જ્ઞાન સાથે આવી રીતે આમ લગાવીને એને લાઈક યુ નો
યા એટલે એમનું એ રીતનું સરસ છે એનાલિસિસ.
હા, એ બધું બહુ સરસ રીતે આમ એક્સપ્લેન કરે.
ડિફરન્ટ છે એમ. I will miss next Sunday. I don't know, હું ઇન્ડિયામાં તો હવે બધું પોસિબલ નથી. બધું વાઈફાઈ અમુક જગ્યાએ ના હોય, બધું વર્ક ના કરે, પછી ટાઈમિંગ અલગ થઈ જાય બધું.
પછી આવીને આવીને
સાંભળો. મારે
સચિનભાઈ બધા લોડ કર નાખશે તો તમે પછી કે ડેટ વાઇઝ કે મારે હું નહીં હું પણ નથી નેક્સ્ટ વીક, પણ હું તો પછી આવીને સાંભળી લઈશ.
હા, તમે યુએસએ માં તો આઈ કેન લિસન. યુએસએ માં તો શું ટેપ કરી લઉં, ગમે તેમ ગમે ત્યાં જાઉં ને તો હું ઘણી વાર શું કરું ટેપ કરી લઉં. બેઠા એક રૂમ માં જઈને ટેપ કરવા મૂકી દઉં મારા આઈપેડ માં. એટલે તો અહિયાં યુએસએ માં તો બહુ પ્રોબ્લેમ નથી થતો, પણ
ઇન્ડિયામાં વાઈફાઈ ને
હા વાઈફાઈ પછી હવે બધા બેઠા ઘણા તો હવે એટલી જગા પણ ના હોય કે ક્યાં મૂકીએ. વાઈફાઈ ના ટાઈમિંગ એવા અલગ હોય તો પછી ડિફિકલ્ટ પડે.
બહાર ગયા હોય તો ઘણી વાર મેળ બધું ના
થાય. હા, એટલે સચિનભાઈ ને કેજો આ તો ખાસ અપલોડ કરે, આ તો મને જ્ઞાન વિશે તો બરોબર જાણવું છે. એટલે અમારો એ ભાણે છે ને તો એ શ્રીમદ રાજચંદ્ર આ બધું બહુ દ્રવ્યગુણ પર્યા એટલું બધું જાણે નહીં, એટલે શું એમને સમજાવીએ પણ આપણે એમ થાય બરાબર ને. એ તો પછી પેલા દ્રવ્ય પર્યાય પેલા આપણે જાણવું પડે એમ કીધું, ત્યાર વગર તો બધી સમજ જ નહીં પડે. આ રેકોર્ડિંગ તો બસ પાછું આપણે અવાજ નહીં આવે, આ બધું આવે નહીં રેકોર્ડમાં. એ તો આપણે એડિટ કરતા હશે.
હા, એ આમ તો એડિટ કરતા હશે. I didn't hear him turn off the recording.
હા, એટલે એના બહુ ક્વેશ્ચન એટલે બધું ઘણું પૂછતો હોય છે મને. પણ હવે એક તો આપણે કંઈ એટલા એક્સપર્ટ નહીં એટલે બધું સમજાવી નહીં શકીએ, અને એ લોકો આ બધું જાણે નહીં.
સમજાવવું અઘરું છે આપણે એટલા બધા આપણી પાસે
રાય. આપણે એ તો કહું છું ને બધા શાસ્ત્રોનો અને સંસ્કૃતનો અને બધાનો અભ્યાસ નહીં બધા શાસ્ત્રોનો, એટલે આપણે એટલું નહીં સમજાય. એટલે મેં કીધું ઉપયોગ આ વ્યાપાર થયો તો કે એ તો ક્રિયા થઈ. હવે આઈ ડોન્ટ નો વોટ ધ
ક્રિયા ક્યાં થઈ, તો જ્ઞાનની ક્રિયા
થઈ. ક્રિયા એમ તો જ્ઞાનની ક્રિયા તો થઈ જ ને, તો કામ થયું જ ને જ્ઞાનનું, તો ક્રિયા તો થઈ જ ને. એટલે હવે શું કહેવા માંગતો તો એ મને સમજ ના પડી કે ક્રિયા થઈ.